Market Monster. Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Saturday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, stock market and economic matters. But do remember, we do not address stock or company specific queries. Well, you may call us on the numbers 2342-1050 and 2331-4444. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor, Sparsh Saxena.
Dhanyawad Lalima. Namaskar. Market Mantra ke taza ank ke saath hum ek baar phir hazir hain. Aur aap sabhi shrotaon ko bahut swagat hai. Karyakram mein desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath saath share bazaar ki halchal par ek nazar dalenge aur saath hi charcha bhi karenge. आज शनिवार है और आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल भी कर सकते हैं. ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं. आप हमें इन फोन लाइंस पर कॉल कर सकते हैं. नंबर्स हैं 2342-1050 और 2331-4444. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी कि 011 लगाना ना भूलें. चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद स्पर्श. थैंक यू सो मच लालिमा एंड मैं दिल से अभिनंदन सभी श्रोताओं को.
जी, और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनिजा डैंग.
Thank you, Sparsh. Yes, friends, let's start with the headlines. Well, market snapped 8-week gaining streak. BSE Sensex fell 350 points. Nifty 50 index lost 0.47%. U.S. stocks sold off for a second straight session on Friday. Dow fell 1.5%. The S&P 500 lost 1.8%. Nasdaq slipped 2.4%. And oil prices fell on Friday. Brent settled at $76.81 a barrel. U.S. West Texas Intermediate crude settled down at 3.6%.
घरेलू शेयर बाजार में 8 सप्ताह की बढ़त का सिलसिला टूटा. सेंसेक्स 350 अंक गिरा. वहीं निफ्टी भी 0.47% फिसला. अमेरिकी शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र में बिकवाली देखी गई. डाउ जोन्स 1.5% टूटा. एसएनपी 500 1.8% नीचे और नैसडैक में 2.4% की भारी गिरावट दिखी. शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट. ब्रेंट क्रूड $76.81 प्रति बैरल पर बंद. वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में 3.6% की कमजोरी. और शुरुआत करने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं साप्ताहिक शेयर बाजार पर. और कमजोर आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक शेयर बाजारों के रुझान के बाद कल घरेलू शेयर बाजार में आई गिरावट से 8 सप्ताह की बढ़त का सिलसिला थम गया. हालांकि सप्ताह के दौरान फेड अध्यक्ष द्वारा सितंबर की बैठक में संभावित दर में कटौती का संकेत मिलने के बाद बेंचमार्क सूचकांकों ने नया रिकॉर्ड स्तर दर्ज किया. इस हफ्ते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 350 अंक यानी 0.43% फिसला, जबकि निफ्टी 50 117 अंक यानी 0.47% टूटा. 1 अगस्त को निफ्टी 50 ने 25,078 के नए रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ. वहीं बीएससी के सेंसेक्स ने 82,129 के उच्चतम स्तर को छुआ. बात करें बीएससी के मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप की, तो मिड कैप सूचकांक सपाट बंद हुआ. वहीं स्मॉल कैप 0.6% बढ़ा और लार्ज कैप 0.27% की कमजोरी के साथ दिखा.
एंड नाउ वी जॉइंड बाय गिरधारी लाल जी फ्रॉम मुंबई. यस, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन.
मैडम जी, मेरा एक सवाल है जी. नमस्कार जी.
नमस्ते जी. जी जी पूछें.
मेरा सवाल है जी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है. प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में
जी.
तो मेरा सवाल यह है जी, मैंने प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में खरीदी थी, लेकिन जिस मेरे को डॉक्यूमेंट बनाया, उसने सेल ऑफ परचेज का डीड ना बनाकर गिफ्ट डीड बना के दिया। तो मतलब गिफ्ट डीड मेरी सिस्टर के नाम दे दिया, फिर सिस्टर ने मेरे नाम पे ट्रांसफर किया। तो मेरे इसके बारे में कुछ डाउट है सर जी, जरा क्लियर कर देना।
गिरधारी लाल जी, गिफ्ट डीड बना के दिया है बजाय रजिस्ट्री के, ये तो आपकी जो डील हुई है उसके क्या फैक्ट्स हैं और किस आधार पे उन्होंने गिफ्ट डीड बनाई है इसको देखना पड़ेगा। पर आपको मैं प्रिंसिपली, क्योंकि आप उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं, तो गिफ्ट डीड तो नहीं होती है। जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो उसमें आपको पता होगा शुरू में एक एटीएस बनता है जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। उसके बाद जो भी समय बायर और सेलर आपस में निर्धारित करते हैं उसके बेसिस पर 30 दिन का, 60 दिन का अमूमन होता है, 90 दिन का भी होता है, उसके आधार पर आप उसके बाद रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट सेल डीड तैयार की जाती है। हो सकता है कि कोई गिफ्ट डीड इसलिए बनाई है, शायद आपके परिवार में इंटरनली कोई अरेंजमेंट कर रहे हो। तो जब तक गिरधारी लाल जी सारे फैक्ट्स नहीं पता लगेंगे इसको तो डिसाइफर करना कि गिफ्ट डीड क्यों बनाई गई है। पर मेरी आपको सलाह यह है कि आप या तो पूरे फैक्ट्स बताएं हमें अगली बार, या आपके वहां कोई आसपास वकील है उससे आप सलाह करें, क्योंकि बता तो मैं भी सकता हूं पर उसमें ये मैं प्रॉपर्टी के बहुत गहराई में जाके उसका अध्ययन करता हूं और डॉक्यूमेंटेशन मुझे मालूम है, पर क्योंकि मुझे पूरे फैक्ट्स पता नहीं है तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई भी प्रॉपर्टी की डील इस प्रकार से ना करें जब तक आपकी पूरी तसल्ली, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी तसल्ली नहीं है
जी।
तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको पूरी तरह से इसकी तहकीकात करें कि किन हालात में गिफ्ट डीड बनाई गई है, क्योंकि सेल परचेज डीड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए तभी आप उस प्रॉपर्टी की खरीद बेच करें
जी। और कलकत्ता से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं के सहगल। के जी स्वागत है आपका मार्केट मंथ में, सवाल पूछिए।
हेलो
जी,
गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
जी गुड इवनिंग, सवाल पूछिए जी।
अच्छा, दिस इज रिगार्डिंग सम चेंजेस इन द कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। कैन यू एलैबोरेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर वन एंड न्यू वन?
Okay, Sehgal saab, the difference between the two is that before the budget came, the property capital gain tax was 20% on long-term capital gains. On the short-term, the rate was as per the slabs, whereas on equity, it was 10%. It has now been enhanced to 12.5%. And I would further elaborate on equity. There was a deduction under Section 112A, which was for 1 lakh rupees. That has been enhanced to 1,25,000 rupees. So these are the changes done in the equity. In property, the cost inflation index, which used to be there, it used to start from 1st of April 2001 and gradually it went up. In fact, for the current year, the index used to be 363. Why I'm saying used to be, because it's history now. The cost inflation index is gone. So you were given the benefit of inflating the cost and reducing your capital gains. So whereas on one side, the cost inflation index to simplify things has been done. On the other side, the tax incidence has been reduced from 20% to 12.5%. So, my calculations, Lalima and Sparsha, I would like to clarify that about 70 to 80% property sellers, contrary to the misconceptions which are happening that probably something has been taken away from us, 70 to 80% property sellers are in profits right now. Mm-hmm. I mean, in profits in the sense that they are gaining out of these changes.
Mm-hmm.
Whereas in equity also, up to 2,25,000 of capital gain, even you are gaining because of 112A, enhancement of the total deduction. So those are the changes, Sehgal saab. Maybe, if you're not very familiar with these terms, it may be slightly difficult to understand, but, giving respect to other callers as well, I will have to restrain my explanation to only as much. If you have any further doubts, you're free to call on Monday. I think we take callers on Monday as well.
Yes.
Probably the other expert would be able to elaborate. But I hope you've understood from what I can decipher after talking to you. I think you seem to be having the basic knowledge about it. So I'm sure this would be helpful for you.
Right. All right, we move on and we are now joined by K.K. Sinha ji from Faridabad. Ji, sawal puchhe.
हेलो
हेलो जी 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 सवाल पूछिए
जी जी मार्केट बाजार टीम को नमस्कार
नमस्कार जी
और
जी
कोहली साहब को भी नमस्कार
नमस्कार सिन्हा साहब
सर सर तो मेरा ये कुछ क्वेरी है
जी
कि आई मीन पहले तो ये है कि भाई पिछले साल मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा था
जी
और आने वाले एक साल के लिए
जी
हम अपने पोर्टफोलियो में किस रेशियो में लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप को रखें ताकि मैक्सिमम ऑफकोर्स प्रॉफिट हो सके ऐसा कुछ रेशियो है तो बताएं।
सिन्हा साहब, सवाल बहुत अच्छा है आपका, पर ऐसी कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होती है। आपको याद होगा जो पीरियड आप बात कर रहे हैं उससे पहले अगर हम जाएंगे तो कई बार तो मिड कैप स्मॉल कैप की बहुत पिटाई भी हुई थी जो स्टॉक्स थे, तो ऐसा कोई एक फिक्स नॉर्म तो नहीं है, क्योंकि हालात जैसे जैसे बदलते हैं सेना साहब वैसे वैसे इसकी कॉम्पोजिशन भी बदलती है। आपको पता होगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, लार्ज कैप्स थोड़े से और स्टेबल होते हैं क्योंकि वो बड़ी कंपनीज होती हैं, 20,000 करोड़ से ज्यादा उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। तो ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, पर जो लोग रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सिन्हा साहब इसमें हम डिसीजन लेते हैं, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो वो लोग थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, लार्ज कैप में कम रखते हैं। पर क्योंकि आप मुझे लग रहे हैं कि आप थोड़ा सा सेफ चलते हैं, हालांकि आप चलते भी हैं पर सेफ चलते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप 50% लार्ज कैप में रखिए। हालांकि फिर मैं आप ये राइडर लगा दूं साथ में कि ये बहुत स्पेसिफिक होता है आपकी इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, 50% आप लार्ज कैप रखिए और बाकी आप 25-25% मिड कैप और लार्ज कैप रख सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी म्यूचुअल फंड को जो हाइब्रिड हो उसको भी चूज कर सकते हैं, पर क्योंकि आप शेयर मार्केट में सीधा निवेश करते हैं आई एम श्योर आपको बेसिक नॉलेज है, तो इस तरीके से होता है। अगर आप बहुत एडवेंचरस होना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क टेकिंग होते हैं तो आप ये प्रोपोर्शन को घटा बढ़ा सकते हैं, पर ऐसा कोई फिक्स नॉर्म सिन्हा साहब नहीं है कि इतना मिड कैप होना चाहिए, बहुत सारी चीजों पे ये निर्भर करता है और आई थिंक उन सब फैक्टर्स को यहां लिस्ट करना बहुत समय लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं मैंने संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करी है।
और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से, योगेश शर्मा। योगेश जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
सभी को नमस्कार
जी। नमस्कार,
दो सवाल है। पहला है कि हमने जो बजट आया था उससे कुछ एक हफ्ता पहले ही प्रॉफिट अनाउंस करा था, तो जो टैक्सेशन उस पर रेगुलेट होगा, क्योंकि उस वक्त तो बजट के नियम लागू नहीं थे, तो क्या मेरा जो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल बनेगा वो नए नियम के हिसाब से बनेगा या जो पुराना नियम था उसके हिसाब से बनेगा, एक सवाल तो ये
जी।
दूसरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, तो क्या गवर्नमेंट ये मान रही है कि इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है?
योगेश जी, पहले आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं। देखिए, जब आप इक्विटी की बात करें, आपको पता होगा बजट में ये जो अमेंडमेंट आया है इक्विटी को लेके, ये तुरंत लागू हो गया है। मतलब अब के बाद, यानी कि बजट की डेट के बाद, जो भी आप 23 जुलाई को बजट आया था उसके बाद आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन पे नया रेट लगेगा जो कि 12.5% का है लॉन्ग टर्म पे, और आपको जो 112A का बेनिफिट है वो भी अब 1,25,000 तक मिलेगा। तो आप इसको जो अप्रैल से लेके उस जुलाई तक की डेट थी उसके लिए और उसके आगे के लिए, यानी कि पूरे साल के लिए ही है, तो आप नए प्रोविजंस को अब मान के चलिए। दूसरा, आपने पूछा कि क्या सरकार इसको नजरअंदाज कर रही है, क्या सरकार ये मान रही है कि अब इन्फ्लेशन नहीं है? ऐसा नहीं है कि सरकार ये मानती है इन्फ्लेशन। मुझे लगता है वित्त मंत्रालय का, सरकार की ये मंशा है कि हम टैक्स का जो पूरा सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करें, उसको कॉम्प्लिकेटेड ना रखें। आपको पता होगा कैपिटल गेन, आप जैसे लोग तो फिर भी समझते हैं, योगेश मैं जानता हूं आप बहुत जानकार हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, पर ज्यादातर लोग इसको समझते नहीं हैं। और आपको पता होगा जो न्यू रिजीम लाई गई है टैक्स की, वो भी इसीलिए लाई गई थी वित्त मंत्री महोदया द्वारा कि उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन की तरफ एक कदम है, इन्फ्लेशन से इसका लेना देना नहीं है। और मैंने अभी, मैं लालिमा और स्पर्श को यही बता रहा था, आपसे पहले जो क्वेश्चन करने वाले थे उनको भी मैं यही बता रहा था कि 70-80% लोग, योगेश, इस इंडेक्सेशन हटाने से उनको फायदा हुआ है, क्योंकि जो टैक्स का रेट है वो शार्पली नीचे आ गया, 20% से 12.5% आ गया। तो और आप, अगर मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत कम है और आपने बहुत पहले का मकान लिया हुआ है, जब ज्यादातर लोगों के ऊपर कैपिटल गेन इंसिडेंस तभी ज्यादा होता है, तो उन लोगों को ऑलमोस्ट 100% फायदा हुआ है इससे। तो आप इसको फायदे नुकसान पॉइंट ऑफ व्यू से, योगेश, देखिए, ऐसे मत देखिए कि इन्फ्लेशन का आप सरकार उसके लिए संवेदनशील नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं जी।
Alright, let's move on. The Prime Minister, Mr. Narendra Modi, inaugurated the 32nd International Conference of Agricultural Economists, ICAE, at the National Agricultural Science Center, NASC Complex, New Delhi today. The theme for this year's conference is Transformation Towards Sustainable Agri-Food Systems. It aims to tackle the pressing need for sustainable agriculture in the face of global challenges such as climate change, natural resource degradation, rising production costs and conflicts. Around 1,000 delegates from around 75 countries took part in the conference. Highlighting the relevance of all six seasons in agricultural planning in India, the Prime Minister mentioned the distinct qualities of 15 agro-climatic zones. He noted that agricultural produce changes if one travels about 100 kilometers in the country, be it farming on the land, the Himalayas, in the desert, water-scarce regions or the coastal regions. This diversity is crucial for global food security and makes India a ray of hope in the world, the Prime Minister remarked. Well, so much for agriculture, as it is endemic to our country, so many people involved in agriculture. Let's move on. We are now joined by Sanjeev calling us from Ghaziabad. Yes, Sanjeev, please ask a question.
Namaskar, Koliji.
Namaskar, Sanjeev.
जी कोहली जी, मेरा एक सवाल है. मेरे रिलेटिव है जिनकी एज लगभग 70 थी, वो नाउ इज नो मोर. उनकी वाइफ है और उनका जो बेटा है वो यूएस सिटीजन है.
जी
उनके डीमैट में जो उनका नॉमिनी था वो यूएस सिटीजन है.
जी
जो कि उनका डीमैट ओपन करने के लिए शायद यहाँ पर एक कोई एनआरआई के लिए कोई सीक्रेट कोड भी मांगते हैं डीमैट ओपन करने के लिए.
जी
अब क्या हो, वो उनको देना नहीं चाहते जो उनके बेटे हैं.
जी
अब जो उनकी मतलब मदर है जो है वो भी 70 प्लस है, वो अब नाउ शी इज वेरी वरिड कि उनके बाद जो 5 लाख रुपए के स्टॉक से उनका क्या होगा. तो कोई ऐसा कुछ है इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए.
संजीव देखिए, जो प्रोसेस है डीमैट अकाउंट खोलने का एनआरआई के लिए, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है. वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, उसमें ओटीपी वगैरह आता है, कोड आता है, और ये सब इसलिए किया गया है कि कोई उसका मिसयूज ना कर सके. तो मुझे लगता है कि जो नॉमिनी, जब आप शेयर्स देते हैं तो डीमैट में आप नॉमिनी भी रख सकते हैं, पर उनमें या तो विल के जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको अगर वो ऑपरेट करना चाहते हैं डीमैट अकाउंट को, या वो अपने नाम करना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं, उसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो उनको इस प्रोसेस से तो संजीव गुजरना ही पड़ेगा. इसका और कोई शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज्ड मेथोडोलॉजी है जो एनएसडीएल ने बना रखी है डीमैट अकाउंट खोलने की, उसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके. तो इसके लिए तो अफसोस है कि उनको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा. और क्योंकि फैमिली में ही बात है, तो मैं चाहूंगा कि इसको करते हैं और बाद में कभी चेंज करने की जरूरत पड़ी तो उसको चेंज कर सकते हैं. जी
ऑल राइट, वी आर नाउ जॉइन्ड बाय एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलुरु. यस मिस्टर प्रसाद, यू आर अ रेगुलर कॉलर आई थिंक. ग्रेट टू हैव यू वंस अगेन इन द शो. प्लीज आस्क अ क्वेश्चन.
हाई, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर.
गुड इवनिंग.
Good evening, Ms. Lalima. Good evening, Sparsh.
Good evening.
Good evening, Mr. Kohli.
Good evening, Mr. Prasad. I know it's been a long time.
Because I went to U.S.
Okay.
And my question is related to that. Actually, I went to U.S. and U.K. both and had an opportunity to visit both New York Stock Exchange and London Stock Exchange.
Yeah, yeah.
Now, what has happened is, when I try to fill my IT returns, in the income tax AIS, all my money spent on the travel and the hotel bookings, everything was registered in the AIS.
Okay.
This is the money which I spent on the profit made on the stock market, for which I already paid the income tax.
Yeah.
So what is this travel expenses?
Yeah.
Do I something I had to show when I file the returns for the next year?
All right, Mr. Prasad, a very good question. In fact, this AIS Lalima and Sparsh has been a very magical statement. You know, I have given a new name, although it's called Annual Information Statement.
Mm-hmm.
But in my own way, I call it Aina Ise Samajhiye. It really shows you the mirror on what you have done. You know, I've got a new expansion of these three letters.
Mm-hmm.
Mr. Prasad, you don't need to worry, because AIS just tells you about the spendings that you've done on certain fronts. For example, credit card, property, you know, you've traveled abroad, you bought international shares. All you need to ensure is that the source of the funds which you've spent for this purpose must be explainable. It should be explicable. I mean, you should be in a position to explain as to where did this money come from. That's the only idea. So AIS just gives you a heads up that the department says, listen, we are aware that you spent this money, and you should be prepared to explain it as and when you, and you must be aware if you've invested this money in LSE or in NY Stock Exchange, then there is a schedule in the income tax return called Schedule FA, Foreign Assets, So you have to disclose this in your return and for the next year. Nothing to worry. You are a very honest taxpayer. We know you're a very regular caller. And this is normal for AIS. It's very magical, you know, when you find something which you don't remember yourself sometimes. And your AIS shows that, oh, my God, when did I do this transaction? So that's the magic of AIS, but nothing to worry.
Bilkul, Aina, isse samajhiye, sab dikha deta hai. Aur humare saath Rajasthan Junjunu se jud chuke hain Subhash. Ji, Subhash ji, swagat hai aapka. Sawal puchhe.
Namaskar, Market Mantra aur Kohli saab ko namaskar.
Namaskar, Subhash ji.
Sir, main public sector se retire hua hoon, ek company se.
Ji.
Hamari company basic aur DA kuch percent jo hai, wo pension ke liye har mahine एक फंड के एक ट्रस्ट के थ्रू LIC को जमा करवाती है
जी
और 60 साल के होने के बाद में उस कॉर्पस से पेंशन देती है
जी
और उसका 1/3 आप कम्यूट कर सकते हैं
जी
मेरा क्वेश्चन है कि जो 1/3 हमने कम्यूट कर रहे हैं जो हमें मिल रहा है
जी
क्या वो टैक्सेबल है क्योंकि सारा का सारा कंपनी दे रही है यही मेरा क्वेश्चन है
सुभाष जी इसमें ऐसा होता है कि जो अनकम्यूटेड पेंशन है आपका डाउट बिल्कुल ठीक जगह से निकल के आ रहा है वो तो टैक्सेबल होता है क्योंकि वो आपको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे मिलता रहता है नॉर्मली कम्यूटेड वाला पोर्शन कई दफे एग्जेम्प्ट होता है इसके लिए आप कहेंगे कि एग्जेम्प्ट है या नहीं है आप डाउटफुल क्यों बता रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे जो आपका कंपनी का ट्रस्ट है जो बना रखा है उन्होंने उस ट्रस्ट में क्या क्लॉज है क्या उस ट्रस्ट ने कोई आयकर में छूट ले रखी है तब तो नहीं होगा पर क्योंकि आपकी पेंशन और बेसिक और डीए के रूप में आ रहा है तो मुझे प्राइमा फेसिया या टैक्सेबल भी नजर आ रहा है तो इसके लिए सुभाष जी मुझे जो आपके कागजात हैं जो दस्तावेज हैं उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि उसमें कहीं ये मैं आपको सलाह दूंगा आप उसको गौर से पढ़िए उसमें ये बात लिखी होगी पर जैसे आप मुझे बता रहे हैं नॉर्मली कम्यूटेड पेंशन अगर सरकारी आती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है अनकम्यूटेड टैक्सेबल होती है पर क्योंकि आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से रिटायर्ड है तो मुझे हल्का सा डाउट है कि आपकी टैक्सेबल होगी पर इसका कंक्लूसिव ओपिनियन तभी आ सकता है जब हम आपके दस्तावेज को पढ़ के देखें अफसोस के हम रेडियो पे कागज पढ़ नहीं सकते हमारे सामने जो रखे हैं वो तो पढ़ सकते हैं पर आपके दस्तावेज हम नहीं पढ़ सकते काश ऐसी टेक्नोलॉजी आती तो मैं आपको हाजिर जवाब अभी कर देता पर आप बारीकी से देखिए आपको जवाब मिल जाएगा
All right, let's take a look at the US markets now. Well, US stocks sold off for a second straight session on Friday and the Nasdaq Composite confirmed it was in correction territory after a soft jobs report stoked fears of an oncoming recession. The Dow Jones Industrial Average fell 1.5%, the S&P 500 lost 1.8% and the Nasdaq Composite lost 2.4%. The declines pushed the Nasdaq Composite down more than 10% from its July closing high to confirm the index is in a correction after concerns grew about expensive valuations in a weakening economy. The S&P 500 closed at its lowest level since June 4. Both the benchmark S&P index and the blue chip Dow suffered the biggest two-day slides since March 2023. Sharadji, whatever happened to Uncle Sam? So far, employment had gone up and the stocks were doing so well. And over the last few years, the stocks in the U.S., the markets had gone up by 40% or so. Now, what happened?
I think, whatever factors that you spoke of, Lalima, they are already on the table. But what is not on the table is the Purchase Managers Index, which has fallen down. It is at its lowest from March in the U.S. So I think the overall economic activity is sort of subsiding. That is making the markets nervous. And we should not forget that there's going to be elections in a few months in the U.S.
Yes.
And, you know, pre-elections, there are so many decisions which are, you know, we call something as window dressing of the economy. So, it happens everywhere across the world. You know, there's always some window dressing. So I think some of the investors and traders have been able to discover that window dressing and they're coming to term with what is happening on the ground. That may be the reason. So I had been giving a word of caution from the last few weeks and I shouldn't be saying I'm glad that it's coming true, but so be it.
तो ये बेसिक करेक्शन माने या फिर किसी
नहीं आई थिंक इट इज अ करेक्शन है थोड़ा सा खतरा भी मुझे नजर आता है क्योंकि वेस्ट एशिया में इस समय जो हो रहा है मुझे लगता है वहां पर यूएस की इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है तो वो भी एक मुझे खतरे की घंटी सुनाई देती है अगर ये एस्केलेट होता है वेस्ट एशिया में जो इसराइल और ईरान की हम बातें सुनने में आ रहे हैं या बाकी गाजा में जो चल रहा है पहले से ही तो मुझे लगता है थोड़ा सा खतरे की घंटी और निवेशकों को ट्रेडर्स को सतर्क हो जाना चाहिए
And almost like Rebecca, US has its presence, may not be seen, but has its presence in many places.
Absolutely, absolutely, and undoubtedly so. So a word of caution to all the traders and investors here.
Right, so that's important. Let's move on to our calls. Prem Pujari is calling us from Faridabad. Ji, Prem Pujari ji, sawal puchhiye.
आकाशवाणी को नमस्कार, सदर जी को विशेषकर नमस्कार।
नमस्कार, आपका बहुत खूबसूरत नाम है प्रेम पुजारी जी।
मैं चार हफ्ते से आपकी वेट कर रहा था और पिछले दो हफ्ते से मेरी कॉल कट जा रही थी। तो सर मेरा ये सवाल है प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक के बारे में। मेरा प्राइवेट बैंक में एफडी मैच्योर होने वाला है
जी।
वहाँ का मैंने इंक्वायरी करा, सीनियर सिटीजन का जो रेट है वो 8% है
जी।
क्या प्राइवेट बैंक की हम विश्वास कर सकते हैं? कोई 19 महीने के लिए 8% ले रहा है, कोई 18 महीने के लिए 8% दे रहा है, कोई 12 महीने के लिए 8.35% दे रहा है। तो 8.35% वाला एक महीने के लिए दे रहा है, सॉरी 12 महीने के लिए दे रहा है।
कोई
प्राइवेट बैंकों में हम क्या इतना विश्वास कर सकते?
बिल्कुल प्रेम पुजारी जी, मैं आपका सवाल समझ गया। आप विश्वास कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनिटरिंग सिस्टम है। कोई फर्क नहीं है प्राइवेट बैंक में और पब्लिक बैंक में। जहां तक रिस्क की बात है, बहुत ही स्ट्रांग मॉनिटरिंग। और जब जब आप संकट आया किसी बैंक में, मुझे याद है येस बैंक था एक पहले, ऑलमोस्ट नो बैंक होने लगा था, पर उसको सरकार ने संभाल लिया। तो मुझे लगता है रिजर्व बैंक का बहुत स्ट्रांग मॉनिटरिंग है, कोई चिंता की बात नहीं है। जहां आपको सबसे अच्छा मिलता है प्रेम पुजारी जी, आप वहां करिए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाइए, हमें इस बात से खुशी होगी।
एक जनरल परसेप्शन एक जनरल परसेप्शन भी है शरद जी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट करो तो वो आपका स्टेबल है, कोई भाग के कहीं नहीं जाएगा।
अब इतना कोई फर्क नहीं है लालिमा, मुझे लगता है अगर आप बैलेंस शीट देखें तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स की भी बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि रिजर्व बैंक का मॉनिटरिंग बहुत ही स्ट्रांग है। अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट बैंक्स की क्या जवाबदेही होती है रिजर्व बैंक को, तो हमें पूरा का पूरा शो एक उसके लिए चाहिए और तब आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में हमारा पैसा सेफ है।
और जहां तक मैं सही हूं शरद जी, क्या इंश्योर्ड भी रहते हैं एफडीज?
5 लाख रुपए तक आपका पैसा इंश्योर्ड है, पर उससे ज्यादा आप रखें भी 5 लाख सोच के लोग जरा हड़बड़ा जाते हैं, उससे ऊपर गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं।
और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से एसपीएस जैन। जैन जी आपका स्वागत है।
हाँ, नमस्कार जी कोहली जी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई दे रही है
जी। मुझे भी आपकी बहुत दिनों बाद सुनाई दी।
ये अभी न्यू रिजीम में करीब 2/3 रिटर्न्स फाइल हुए हैं
जी,
खबर है
जी।
लेकिन मुझे इसकी एक चिंता है कि पुराने रिजीम में हमें कंपलसरी सेविंग 80C में हो जाती थी
जी,
1.5 लाख या उसके और ऊपर
जी
जाती थी, वो मिसिंग हो जाएगी अभी। अब वो सेविंग की हैबिट जो थी इससे हो
जाएगी। मैं समझ सकता हूं जैन साहब, आपके आपके विचारों से मैं सहमत हूं।
सवाल ये है कि अभी सोने को कुछ और परचेज कर लें इन व्यू ऑफ दिस मिडिल ईस्ट क्राइसिस।
अच्छा, चलिए जैन साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर देखिए सरकार की मंशा है इसको सिंप्लीफाई करना, और इस बार 2/3 लोग नई रिजीम में चले गए और उनको बकायदा फायदा हुआ है। तो मुझे लगता है अब हम ये जो सेविंग हो जाया करती थी आपके जमाने से हमारे जमाने से, इसको हमें पीछे अब छोड़ना पड़ेगा, बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा आपने कहा सोना, तो सोने वालों की तो चांदी हो रही है लालिमा स्पर्श। तो मुझे लगता है सोना आगे भी मुझे भविष्य उज्ज्वल लगता है। जब जब इसमें करेक्शन आए आप थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करते रहिए।
Wives who usually invest in a few coins because
yes, but jewelry should only be used for decoration purposes, for dressing yourself up. Investment in jewelry is not recommended.
That's right, yeah, because you have making charges and all that.
Exactly,
I know it
and
better.
The impurities as well.
I know it better.
Yeah.
All right, moving on to our oil story. Oil prices fell on Friday, settling at their lowest since January after data showed the U.S. economy added fewer jobs than expected last month, and weak Chinese economic data added more pressure. Brent crude futures settled down 3.4% to $76.81 a barrel. U.S. West Texas Intermediate crude futures settled down 3.6% at $73.52 at their session lows. Both benchmarks fell by more than $3 per barrel. A quick comment, we have a few seconds.
I think this the sort of cooling down of the crude prices you're seeing may be temporary because the West Asia tensions are growing, so you might see it reversing very soon. Yeah, and you know what is happening around Iran, which is one of the largest suppliers of crude. I think there is a need for caution. People who trade, there's a lot of speculation, Lalima, which goes on in terms of crude prices. There's a lot of speculation, and I feel that the tensions might just reverse. We saw $79 per barrel happening a couple of days ago, which is good news for speculators. But then I think we need to keep a watch because what is happening happening in West Asia is a bit of a concern.
Fine. On that note, thank you, Sharad Kohli ji, for joining us in Akashvani Studios. Pleasure to have you yet once again after quite some time.
Pleasure is all mine.
Seems your listeners were missing you as well.
My pleasure.
All right, before we wind up, friends, here's a reminder of the headlines. Market snapped 8-week gaining streak. BSE Sensex fell 350 points. Nifty 50 index lost 0.47%. US stocks sold off for a second straight session on Friday. Dow fell 1.5% and the S&P 500 lost 1.8%. Nasdaq slipped 2.4%. Oil prices fell on Friday. Brent settled at $76.81 a barrel. U.S. West Texas Intermediate crude settled down 3.6%. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Sparsh Saxena, signing off. Namaskar.
Market Mantra.